से ये बात कही जाती है कि आतुरता व्याकुलता होनी चाहिए, तो उसमें श्रद्धा उसके अंतर्गत उसको विश्वास बिना ऐसी व्याकुलता नहीं होती, श्रद्धा बिना व्याकुलता नहीं होती, प्रेम बिना ऐसी व्याकुलता नहीं होती। तो उसे व्याकुलता के आतुरता के अंतर्गत ये सब बातें हैं। भरत जी महाराज जो व्याकुल हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं, वो भरत जी क्या चीज है या समझो कि उस व्याकुलता से सिद्धि हो रही। प्रेमी जो है प्रेमास्पद के वियोग में जी नहीं सकता, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमी जो है बिना प्रेमास्पद के फिर समझो कि जी नहीं सकता, व्याकुल हो जाता है। जब प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंच जाता है तो भगवान क्षण मात्र में रुकते नहीं। जब उसका अनंत प्रेम हो जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है, तो रुकने का कोई कारण नहीं। रुके तो भगवान के ऊपर समझो कि दोष आता है कि क्यों रुके भगवान। तो प्रेम की पराकाष्ठा है या के प्रेमी के बिना जीवे नहीं, प्रेमी के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सके। प्रेमी के वियोग को बर्दाश्त न करने का ये हेतु नहीं कि कोई विष खा करके मर जा, आत्महत्या करके मर जा, नहीं, प्रेमी के बिना वो तड़प करके के मर जावे। जैसे मच्छी जो है जल के बिना व्याकुल होकर के मर जाती है, वो मरना चाहती नहीं किंतु जल के बिना वो जी नहीं सकती। इसी प्रकार से थी अपने प्रेमी के बिना जो जी नहीं सके और व्याकुल होकर के उसके प्राण चले जावे, तो ये उसकी कसौटी है। श्रद्धालु की यह कसौटी है कि श्रद्धालु जो होता है वो वियोग को तो बर्दाश्त कर लेता है, किंतु उसकी जो आज्ञा है, उसका जो संकेत है, उसकी अवहेलना वो नहीं कर सकता। अवहेलना की बात तो दूर रही, उसका वो त्याग भी नहीं कर सकता, चाहे अपने मन के कितना ही विरुद्ध क्यों नहीं हो, वो हंसता हुआ उसका पालन करता है। उसको मरने की भी आज्ञा दे देवे तो वो हंसता हंसता मरता है। मरना तो सबके मन के प्रतिकूल पड़ता है किंतु वो हंसता हंसता मरता है। मयूरधर राजा का लड़का, जिसको राजा मयूरधर पूछते हैं कि इस प्रकार से दो साधु आए हैं और वे ऐसा कहते हैं कि हमारा जो सिंह है वो मनुष्य का मांस खाता है और तुम्हारे पुत्र का जो मांस है उसको जो तुम दे सकते हो तो दे दो। तो मैं पूछने के लिए आया हूं कि मेरा अधिकार नहीं कि मैं दे दूं। तो अपने स्त्री से पूछता है, अपने पुत्र से पूछता है, तो लड़का कहता है कि इस विषय में आपको विलंब नहीं करना चाहिए, वे तो साक्षात भगवान हैं। हमारा जो शरीर है वो तो एक उसे सफल हो जाएगा। तो राजा मयूरधर दौड़ करके कहता है कि ठीक है, मैं अपने पुत्र को देना स्वीकार करता हूं, मेरा पुत्र सिंह के लिए त्याग। बोला नहीं, हम ऐसा नहीं लेंगे, तुम और तुम्हारी रानी दोनों मिलकर उसको बीच में से चीर डाल, तब उसको हम स्वीकार करें, हमारा सिंह स्वीकार करें। बहुत अच्छी बात है, क्रोध लेकर के अपने पुत्र के मस्तक के ऊपर से क्रोध चीरी जाती है। लड़का हंसता रहा, मस्तक पर तो क्रोध चलती है, लड़का हंसता रहता है। तो उसके दो टुक कर दिए गए, एक सिंह को डाल दिया गया, एक रख दिया गया। तो उसका चेहरा लड़के का हंसमुख हो रहा है। राजा और रानी भी समझो कि एक प्रकार से अपने पुत्र को हाथों से चीर करके दे रहे, किंतु आगे जाकर फिर भगवान कहते हैं कि अब रानी तो रसोई बनावे, राजा जल भरे। बोले बहुत ठीक है, बड़ी आनंद की बात है, इसके मां तो हमारे प्रेम की बात है, ऐसा सौभाग्य हमारे को मिले। तो बड़े प्रेम से रानी रसोई बनाती है, राजा जल भरता है, बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। फिर एक प्रकार से रानी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर भगवान ने कहा हम तो भोजन नहीं करेंगे, क्यों, कि तुम्हारी रानी तो रोती है। महाराज रोने का ये कारण नहीं है कि कोई पुत्र के आपने शोक हो उसका रोना नहीं, तो इसलिए रानी रोती है कि हमारे पुत्र की जो लाश है वो आठाना तो प्रभु के काम में आ गई और आठाना पड़ी है उसने क्या अपराध किया, वो भी आपके भीषण के काम मानी चाहिए। क्या अपराध हुआ जो उसका शरीर सब काम में नहीं आया। तो अर्जुन जो है उसके चेले के रूप में अर्जुन ने कहा हमारा सब बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, तो दया करनी चाहिए। तो भोजन करने के वास्ते तैयार हो गए। बोले अच्छा भोजन करने की तैयारी करो, हम सब साथ में जीवेंगे, जो आप क्या क्या। बोले चार पनवाड़ा चार पुरुषा तो पूरा एक आधा ठीक है, जैसे कहा पुरुष दिया। बोले भोजन करो। बोले अपने लड़के को बुलाओ रतन कौर, महाराज वो तो लंबी नींद से होता है। बोले तुम बुलाओ उसको, तो आधा शरीर उसका पड़ा है उसको बुलाया, तो आधा जो शरीर है वो पूर्ण होकर के सुभाष जी की जरा जी आ रहा हूं, अगर हाजिर हो गया। सबने भोजन किया, अब भगवान प्रकट हो गए, पहचान गए कि भगवान। बोला राजा भोज मैं तुम्हारे पर खुश हो गया, तुम्हारी जो इच्छा सो तुम वरदान मांगो। बोले प्रभु वरदान मैं यही मांगता हूं कि भविष्य में कलयुग आने वाला है, तो जैसी कड़ी परीक्षा मेरी है ऐसी किसी की नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो कोई आपका नाम भी नहीं लेगा, उस परीक्षा में सभी फेल हो जाएंगे। तो राजा ने कैसी कड़ी परीक्षा दी, उस कड़ी परीक्षा को छोड़कर हम तो इतना ही अंश लेते हैं कि जो लड़का हंसता हंसता प्राण दे रहा है उस लड़के के मृत्यु सबके विरुद्ध है, मरना कोई मामूली बात नहीं, किंतु लड़का हंसता हंसता मरता है तो भगवान में उनकी श्रद्धा है, इस वास्ते उनके वचनों की अवहेलना कैसे कर सकता है। राजा ने अवहेलना नहीं की, कहा राजा ने कि मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, मेरा अकेला का अधिकार नहीं है, मेरी रानी से मेरे लड़के से पूछ करके। और जब लड़के की प्रसन्नता देखी तो रानी ने भी हां कर दी। तो राजा और रानी से भी लड़का का जो मत है वो सराहनीय है, मरना तो लड़के को है, हंसता हुआ मर रहा है, तो ये परम श्रद्धा है। परम श्रद्धा ये देखने के मत तो साधु दिखते हैं और वो भगवान मानता है, प्रत्यक्ष में तो है साधु, अरे भगवान तो अप्रत्यक्ष में है। तो उन्होंने अपने श्रद्धा से भाव से ये मान लिया कि साक्षात भगवान है, तो एक प्रकार से उनकी भगवान के वचनों में परम श्रद्धा हो गई। तो जब परम श्रद्धा हो जाती है तो फिर भगवान के दर्शन में विलंब नहीं होता, भगवान उसको मिल गए। तो इस प्रकार से थी हम लोगों की भगवान में परम श्रद्धा होनी चाहिए। तो गीता के जो वचन है सब भगवान के वचन है, और इन सब के वहां हमारी परम श्रद्धा हो जावे तो भगवान हमारे को अभी मिल सकते हैं, कोई विलंब का काम नहीं। कि गीता भगवान के वचन है, इनको अक्षर से पालन करना चाहिए, ये हम निश्चय कर ले कि हमारी परम श्रद्धा हो जावे तो गीता के वचन अक्षर से स्वाभाविक ही पालन होने लगे, उसको रोक कूद सके। श्रद्धा की कमी रुकावट डालने वाली चीज है, यदि हमारी परम श्रद्धा गीता के मां हो जा, गीता के वचनों में परम श्रद्धा हो जावे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि गीता के एक रति भर भी हम बाहर जा सके। हमारा स्वभाव हो जावे, स्वाभाविक ही हमारे शरीर से गीता के अनुसार चेष्टा होने लगेगी, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, श्रद्धा खुद करवा लू।
सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी हो।
प्यार हुआ कि ये मन जो है सो बस में कैसे हुए, एकाग्र कैसे हो। यदि मन वश में हो जाए तो फिर एकाग्र करना सहज ही है। और एकाग्र होकर के भी बस में होना कठिन है। तो एकाग्र को मतलब यह है कि जैसे भगवान को ध्यान लगाए तो भगवान के ध्यान में ही लग गए हो, फिर भगवान के ध्यान को छोड़कर इधर उधर नहीं जावे, वो जो एकाग्र। कोई भी आप समझो कि चीज में मन न लगा दी हो तो वहीं लग गए हो। तो संसार के काम के बाद तो ये मन खूब लग ही जाता है, किंतु इसको परमार्थ के काम में, भगवान के काम में लगाने की बात चल रही है। तो मन को भगवान के ध्यान के मां एकाग्र करना चाहिए मन को। तो मन जो है मन को एकाग्र करना, मन को बसना करना और मन का निरोध करना, निरोध करना जो है वो सबसे परे की चीज है। तो सब में सहायक है वैराग। जहां कहीं हम देखते हैं तो उसका उत्तर मिलता है वैराग। अर्जुन ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है, इसका एकाग्र करना बहुत ही कठिन है। भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हारा क्या, ऐसे उसे महाभार मनो दुर्निग्रंथन अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य गृह थे। हे महाभाव तुम्हारा कर्ण संशय रहित है, ये चंचल मन इसको बस में करना बहुत ही कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य बस हो सकता है। तो अभ्यास यानी भगवान के नाम को जप और वैराग मन संसार के मां आसक्ति को अभाव। तो यह बात भगवान बताई, अभ्यास और वैराग से मन बस में हो सके। मन बस में होने से फिर उपाय करने से परमात्मा की प्राप्ति रूप योग की सिद्धि भी हो सके। महर्षि पतंजलि ने भी यही बात कही कि अभ्यास वैराग धर्म तन निरोध है, अभ्यास और वैराग से चित्त का निरोध होता है। तो चित्त की वृत्तियों का जो निरोध होना है वो परमात्मा की प्राप्ति है। मैं एकदम निरोध अवस्था के मान ले गया, मन को बस में करने के बाद जो आपने बस में किए हुए मन से और जो योग जो है समाधि को, योग को, परमात्मा की प्राप्ति को उपाय करने से हुए। तो महर्षि पतंजलि को कि नहीं, अभ्यास और वैराग से सब काम हो जाओ। तो अभ्यास और वैराग ये दो उपाय बतलाए गए। तो अभ्यास किस तरह करना चाहिए कि यतो यतो निसरती मनस चंचल मस्तिरम ततस्ततो नियमित दात मने बसंग नये। ये अभ्यास कि जहां जहां मन जावे वहां वहां से उसको लाकर के बार बार परमात्मा में लगावे, अथवा जहां जहां मन जावे वहां ही एक प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करे, परमात्मा का दर्शन करे। या दूसरी युक्ति है। तो इस विषय के बीच के वहां तीसरी बात यह है कि मन की चौकसी करे कि मन इस समय में कहां है, क्या काम कर रहा है। आत्मा जो है सो दृष्टा साक्षी होकर के और मन की रुखाली रखे कि मन कहां है, क्या काम कर रहा है। बस तो यही काम आत्मा के जिम्मेवारी के मारे हुए कि मन की तुम रुखाली करो कि मन क्या काम कर रहा है। किस प्रकार से जैसे दो या तीन साल का छोटा जो बच्चा होता है वो चंचल होता है तो माँ उसकी निगरानी रखती है, उसकी रुखाली करती है, वो उससे की दृष्टा होकर के रहती है, रसोई बनाती है, घर का काम करती है, झाड़ू देती है और उसकी नजर अपने लड़के के मन है। लड़का खेल रहा है, खेलता खेलता लड़का कहीं तिनका ले लिया तो माँ झट करती है, ना ये तुम्हारे आंख फूट जाएगी, इसमें आंख के इसके वहां लग जाएगी। वो बच्चा नहीं मानता तो माँ आकर समझाती है और बच्चे को घुरा करके उसके हाथ का तिनका छीन लेती है। बच्चा रोता है तो माँ उसके हाथ में दूसरी वस्तु दे देती है, लाडू देती है, पेड़ा देती है कि जिससे कोई नुकसान नहीं हो। और बालक के में स्वाभाविक यह बात है जो चीज हाथ में आती है वो मुंह के मान लेता है। जो भी उसके हाथ में चीज आती है, चाहे मट्टी आओ, ढेला हो, आम आओ और कोई भी चीज आओ तो वो समझता नहीं, वो तो एक प्रकार से जो है सो मुंह के मान लेता है। मुंह के लेने के समय में कहीं आंख में भी लग जाती है। तो माँ इसकी निगरानी रखती है कि ये बच्चा कहीं नुकसान न उठा ले। बच्चा जो है सो सायंकाल का वक्त है, लालटेन जलाई, झट बच्चा लालटेन की तरफ जाता है, रोशनी की तरफ। माँ कहती है ना जाइए ना, हाथ जल जाएगा। अब बच्चा इस अर्थ को समझता नहीं, वो तो फिर बढ़ता है। तो माँ एकदम उसके पास पहुंच जाती है और वो जब लालटेन को पकड़ता है तो माँ क्या करती है कि उसकी एक उंगली को लेकर के लालटेन के आईने के पास दिखाती है कि देख ताता है ताता। एक बार छुआ देती है जना वो लड़का रोए तो मैंने ज्ञान करा देती है कि ये लालटेन का जो कांच है तेरे को जला देगा। तो वो जब थोड़ा बहुत देखता है तो फिर वो आप बैठ जाता है लालटेन का पास, जाकर हाथ अगर नहीं बढ़ा। अब माँ हाथ उठा कर लेकर उसके लालटेन की तरफ घसीटती, अरे लड़कों को ये ज्ञान हो जाता है कि लालटेन गर्म है हाथ जल जाएगा, फिर वो लड़का उस लालटेन को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से थी ये मन जो है सो लड़के की जगह है और माँ है आत्मा। तो आत्मा जो है उसको एक प्रकार से ये उचित है कि मन रूपी लड़का जो भी एक अपने नुकसान का काम कर रहा है तो एक दो बार उसका थोड़ा नुकसान पहुंचा कर दिखला दे कि देखते ये नुकसान, तो फिर उसके नजदीक नहीं जाए। ज्ञान करा देना चाहिए। और कोई भी जैसे लड़का कोई चीज ले लेता हाथ में, चक्कू लेता है कैंची लेता है और उससे अपने कई घाव कर देता है, तो माँ झट उसके पास पहुंच करके उसके हाथ से चक्कू छीन देती है कैंची को छीनती है, समझाती है ना बेटा उस तरह चोट लग जाएगी तुम्हारे, कितना को वो समझता नहीं उसको छोड़ता नहीं चक्कू। तो फिर आखिर वो नहीं छोड़ता बुलाने पर तो माँ उसके हाथ से जबरन खींचती है और लेकर के बदले में उसके दूसरी चीज देती। तो ये मन जो है ये समझो कि समझता भी है, तो संसार के पदार्थ को जो कि हानिकर है उसका चिंतन करता है और चिंतन करने से उसको नुकसान पहुंचता ही है। तो आत्मा को उचित है कि जो हानिकर जो चीज है वो मन से छुटा करके और उसको दूसरी चीज ऐसी संभला देनी चाहिए जिससे लाभ और हानि नहीं हो। तो जैसे उसके आत्मा लड्डू दे दिया पेड़ा दे दिया, तो यहाँ लड्डू पेड़ा क्या हुआ, ये भगवान के नाम का जप है ध्यान है पूजा है पाठ है, ये कुछ न कुछ उसके हाथ में दे दिया तो वो एक प्रकार से उसका स्वाद आ जाएगा। तो फिर एक वो फालतू चीज को फिर नहीं पकड़ेगा, तो उसको ज्ञान करा देना। तो ये एक युक्ति उदाहरण से ये बात समझ आ जाती। एक दूसरा दृष्टांत दिया जाता है एक कहानी। एक कोई लड़का था तो उस बड़ा चंचल था, तो उस जब उसको फुर्सत मिलता तो लड़कों में चला जाता खेलने के लिए। पिता ने सोचा क्या उपाय करे, पिता की इच्छा कि इसको विद्या पढ़ानी चाहिए और ये विद्या नहीं पढ़ेगा तो भविष्य में इसके लिए बहुत ही हानि होगी। ऐसा सोचकर के पिता जो है एक गुरु के पास में ले गए। तो गुरु जी कहा कि महाराज इसको आप रखो इसकी, तो बोले हम रखेंगे पढ़ाना की विद्या किंतु निगरानी हम नहीं करेंगे, क्यों हमारे पास तो यही है कोई अगर पढ़े पढ़ा देते हैं चला जाओ चला जाओ। तो पिता बोला ठीक है मैं निगरानी करूंगा। तो उस लड़के की पिता निगरानी करते हैं, तो करते करते एक प्रकार से पिता जब घर पर चला जाता है 5 मिनट भी कहीं चला जाता है तो लड़का भाग जाता है। गुरु जी से पूछते हैं लड़का कहाँ गया, बोले हमको पता नहीं। फिर लड़का को खोज करके जाते हैं कि लड़का तो खेल कूद में गया होगा, और ला करके फिर गुरु जी के पास बढ़ा दिया। तो पिता जितने देर तक निगरानी करता है इतनी देर तक लड़का बढ़ा रहा, और वो निगरानी छोड़ा लड़का भाग जाता है। आखिर में पिता ने ये काम किया कि इसकी हर वक्त निगरानी कर ली। तो आखिर की इसके वहां लड़का का वो खेल तमाशा कूद का जो बहस था वो तो छूट गया और फिर उस काम के वहां एकदम लग गया, लगकर उस काम के वहां विद्या के वहां सफल हो गया। तो ये कहानी है दृष्टांत, इसको ज्ञान में ये दृष्टांत को घटाना चाहिए कि चंचल लड़का कौन है कि मन, पिता कौन है कि आत्मा, गुरु कौन है कि परमात्मा। तो तो बार बार इस मन को ले जाकर के परमात्मा में लगा दे आंखें, और गुरु जो है उसे शिक्षा है, लेवल शिक्षा कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी हमारे हुए इष्ट देव। तो रामचंद्र जी की जो लीला है उसके काम में मन को लगा दिया कि तुम रामचंद्र जी की लीला देखता रहे और इसे तू शिक्षा दे, रामचंद्र जी का अनुकरण कर, तू अपने गुरु के स्थान में रामचंद्र जी हैं तो गुरु से शिक्षा, गुरु की माफिकी बनना तो रामचंद्र जी की माफिकी बनना है। तो इस वास्ते रामचंद्र जी का जीवन सामने रखे और उसके अनुसार अपना आचरण बनावे। किंतु उस लड़के को खेलकूद अच्छा लगता है, खेलकूद क्या कि संसार की तरफ जोर लगाना, ये खेलकूद है। पिता जो है तो आत्मा है, तो आत्मा का ये कर्तव्य है कि उस मन की निगरानी हर वक्त रखे, हर वक्त उसकी निगरानी रखे कि लड़का खेलकूद में तो नहीं है ना, खेलकूद में हो तो झट जाकर के भगवान की लीला उसके सामने रखे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से लीला की, उनका जीवन किस प्रकार से बीता, उनके चरित्रों को तुम याद करो और चरित्रों को याद कर करके उन चरित्रों के अनुसार तुम चलो, तुम बनो, उसी के अनुसार तुम चरित्र करो। तो मन बार बार संसार में जा रहा है, यही खेलकूद है। तो संसार में जाओ तो संसार झट संसार से हटा करके और फिर परमात्मा की लीला के मनन करने में लगा दे। तो इस तरह से थी करते करते वो लड़का आगे जाकर के समझ की गुरु की माफ की विद्वान बन गया। तो इस विषय के मां रामचंद्र जी का जो आदर्श है उसको, रामचंद्र जी के चरित्र को आदर्श मान करके और उन्हें का मनन करने से मनुष्य रामचंद्र जी के माफक बन जाता है। तो ये एक युक्ति शास्त्रों में बहुत सी युक्तियां बताई है, उनमें कोई सी भी युक्ति को लेकर के और अपने कोशिश करनी चाहिए। एक आपको सिद्धांत की बात बतलाई जाती है जो एकांत में मैंने बताई थी, तो सबके बड़ी काम की चीज है। ये सिद्धांत की बात है कि हम लोग ये आशा करें अभी काम बन गया तो बन गया, नहीं तो अंतकाल में बन जाएगा। तो अंतकाल के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए, अपने तो जल्दी काम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अंतकाल के समय में हमारे को होश रहे या नहीं रहे, होश रहे क्योंकि हमारे आसपास में सत्संगी भाई रहे या कौन रहे, तो प्रथम तो समय के बीच के वहां होश रहना मुश्किल, और होश रहेगा तो भगवान की स्मृति रहनी मुश्किल। कोई जगह ऐसी बात हो सकती है तो ऐसी परिस्थिति के बीच में परमात्मा की प्राप्ति अपने तो पहले ही कर लेनी चाहिए, इतनी उधार नहीं रखनी चाहिए, वो जोखिम को काम है। जैसे मैंने कहा कि भाई वोट में जन जोखिम है, न्याय में जोखिम है, इसी प्रकार से वो काम भी जोखिम है। यदि आप ये विचार कर लियो कि महात्मा के संग से थी अपना कल्याण हो जाएगा, तो महात्मा के संग से कल्याण हो जाओगे या बात जो है सो कमजोर है, तो जोरदार बात पकड़ ली। जोरदार क्या, ये महात्माओं के संग से अपना साधनी तेज नहीं हो तो मुक्ति होने तो दूर रही। तो पहली यह बात देखनी चाहिए कि अच्छा जो पुरुष को संग होने से वो अच्छा बन जाता है, और अच्छा पुरुष में ये है कि साधन तेज हो जाए। तो जिसके संग से आपका साधन तेज हुए वो महात्मा है, और उसके संग से अपना साधन तेज होना चाहिए। साधन की यदि ढिलाई है तो वो अपने सिद्धांत सीख ले, वो असली सिद्धांत है कि जिस सिद्धांत को मानने से और प्रत्यक्ष में आप उत्तर उत्तर साधन तेज हो रही हो, या बात किसी भी मान्यता से हो बाई मान्यता उत्तम दर्जे का सिद्धांत है। कोई भी एक व्यक्ति है उसने यदि साधक मान करके अपना साधन तेज हुआ तो मैंने साधक मानना अपने लिए फायदे की चीज है, वो महात्मा ही। और एक साधक ही हो चाहिए અરે મને મહાત્મા માને છે, આપણે સાધન તેજ હોય તો આપણે મને મહાત્મા ય માનવું નથી. આપણે તો સાધન તેજ કરીને કે આવશ્યકતા હૈ. ભગવાન કે મંદિર મેં જાણે છે, ભગવાન કા દર્શન હોને છે, અરે ભગવાન કી સમૃતિ હોય ઓર જ્યાદા દેર તક સમૃતિ થાય તો આપણે તો મંદિર મેં બેઠેલો નથી. ભગવાન કી ગીતા પઢને છે, જેથી ભગવાન યાદ આવે તો આપણે તો હર વખત ગીતા કોઈ પાઠ કરવો છે. ભગવાન કી બંસી કી ધૂન સુનને છે, અરે ભગવાન માં મન લગ્યો તો આપણે તો આ બંસી ધોની એક પ્રકાર છે ઉત્તમ શિક્ષા દેને વાળી ચીજ હોય. ઓર મન કી જરા નહીં રખે કે યે ભગવાન કો છોડ કે બહાર તો નહીં જતા, જાઓ તો ઉસી વખત જાણે છે. ઓર ભગવાન કા ધ્યાન નિરંતર હોય ચેષ્ટા કરે. કોઈ ભી ચીજ હૈ, ગંગા હૈ યા ભગવાન કો નામ હૈ, ભગવાન કો સ્વરૂપ હૈ, ભગવાન કી મૂર્તિ હૈ, યા કોઈ મહાત્મા પુરુષ હૈ, કોઈ ભી હો, જીસકે સંસ હૈ ઓર જીસમે માનતા કરને સે, ઉત્તમ બુદ્ધિ કરને સે, ઉત્તમ ભાવ કરને સે, આપણે સાધન તેજ હોવું શરૂ હો ગયું તો બસ આપણું કામ બન. તો આપણે યા કસોટી રખની ચીએ કે જીસ યુક્તિ સે, જીસ સાધન સે, જીસ માનતા સે સાધન તેજ હોય, બસ વોઈ આપણે સબસે બડકર. આપણે ચિત્તમાં કોઈ માનતા કરલી કેમ તો આપણો સાધન ઢીલો પડી ગયો, યા માનતા કરલી કે આપણે સત્સંગ હોય, મહાત્માઓ સંગ હોય તો આપણું તો કલ્યાણ હોય, જે સાધન કરો ચાહે મત કરો, અરિયા માનતા સે સાધન ઢીલો પડી ગયો તો આપણા એક પ્રકાર સે પતન કરશે આરંભ, આપણા પતન કરશે ચાલ રહ્યા પતન કો રસ્તો આરંભ હોય. તો યો સિદ્ધાંત છોડ કરકે જડ સિદ્ધાંતને બદલવું છીએ, યા કસોટી રખણી છીએ કે વોઈ સિદ્ધાંત સૌથી બઢ કરકે હૈ જો આપણે પ્રત્યક્ષ કેમાં સાધન કી ઉન્નતિ હો ગઈ. જીસ સાધન ગિર્યો વો સિદ્ધાંત નહીં હૈ, બને સિદ્ધાંત કો રૂપ દેનો નહીં. નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ.